याकूब की लिखी हुई पत्री उसका पहला अध्याय जिसको आज हम खत्म करेंगे। आज का जो खंड है जो हम देखने वाले हैं, आइए हम उसको पढ़ते हैं। याकूब उसका पहला अध्याय 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक रूप दर्पण में देखता है। जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर भूल नहीं जाता वरन फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की व्यथा में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। पिछली सप्ताह हम लोग देख रहे थे विशेष तौर से 19, 20 और 21 आयत याकूब से, और उसके अंदर में हमने सबसे पहली बात हम ये देखी थी, मुख्य बात जो देखी थी कि प्रभु यीशु का शिष्य उसके यानी कि प्रभु जी के वचन पर चलने वाला अपने आप को प्रमाणित करता है। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आज भी यही हम देखेंगे कि प्रभु यीशु का शिष्य उसके यानी कि प्रभु जी के वचन पर चलने वाला अपने आप को प्रमाणित करता है। लेकिन आज हम उससे आगे जाएंगे। पिछली बार हम लोगों ने चार मुख्य बातें देखी थी इसके अंदर में, और वो बातें हमने देखी थी कि वचन को सुनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होना चाहिए। दूसरी बात हमने देखी थी कि क्रोध करने में धीमा हो। तीसरी बात हमने देखी थी कि सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण करें, यानी कि सारी मलिनता और सारी दुष्टता को छोड़ने के लिए यहाँ पर हमने देखा। और चौथी बात, वचन को हम नम्रता पूर्वक ग्रहण करें। परमेश्वर के वचन के ऊपर में अपने आप को चलने के लिए प्रमाणित करना है तो ये चार बातें यहाँ पर याकूब हमें कहता है कि आपको ध्यान देना है। वो याद दिलाता है कि ये करो, पहले ये करो ताकि तुम समझने पाओगे कि वचन के ऊपर में कैसे चलना। और आज जब हम देख रहे हैं तो आज 22 वचन से आगे हम देखना चाहेंगे, और जिसमें फिर से हम दो मुख्य बात यहाँ पर हम देखना चाहेंगे। पहली बात जो हम देखना चाहेंगे कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाले प्रमाणित करने का मतलब क्या है, कैसे परमेश्वर के वचन के ऊपर में चलने में हम प्रमाणित अपने आप को करें। वचन 22, 23, 24 और 26 और 27, इन सारे वचनों को साथ में लेंगे और उसके ऊपर में हम गौर करेंगे। दूसरी बात जो हम देखना चाहेंगे कि सुसमाचार क्या है, स्वतंत्रता की जो सिद्ध व्यवस्था कही गई है, जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार क्या है, सुसमाचार के ऊपर में हम थोड़ा सा समय बिताने वाले हैं। तो आइए हम पहली बात के ऊपर में जाते हैं कि वचन के ऊपर में अपने आप को चलने के लिए प्रमाणित करना, उसके तहत हमको क्या करना चाहिए। परमेश्वर का वचन यूं कहता है 22वीं आयत के अंदर में, परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। परमेश्वर के वचन को हम सुना, हमने जाना है, हमारे कानों तक पहुंचा है, हमारे अंदर से सारी मलिनताओं को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया है, उसके ऊपर में हम कार्य कर रहे हैं। हमने वचन को ग्रहण किया है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए सत्य है, उसको हमने ग्रहण किया है। अब उस वचन के ऊपर में हमें चलना है, उस वचन के तहत हमें चलना है, तो उसका असर कहां पर दिखना चाहिए, उस बात को हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले परमेश्वर के वचन के ऊपर में जो चलता है, जो अपने आप को चलने वाला प्रमाणित करता है, तो उसके जीवन में तीन महत्व के जो भाग है जीवन के, उसके ऊपर में असर दिखना लगता है या उसके ऊपर में गहरा असर होता है। और सबसे पहला जो असर, अगर हम वचन पर चलते हैं तो हमारे विचारों के अंदर में वो फर्क दिखने लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले शिष्यों को बुलाया, तब उसने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें बनाऊंगा मनुष्य के पकड़ने वाले, यानी कि बनाने का काम हमारे अंदर में, हमारे जीवन के हिस्सों को, हमारे जीवन को बदलने का काम प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बदलूंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। और जब परमेश्वर, जब प्रभु हमारे जीवन को बनाते हैं, तो जो एक महत्व का हिस्सा हमारे जीवन का होता है, हमारे विचार, हमारी सोच, उसके ऊपर में असर होना शुरू होता है। हमारा जो दृष्टिकोण है संसार के प्रति, वो बदलता है। पहले हम कुछ और रीति से संसार को देखते थे, अब जब हमने वचन को सुना है, प्रभु यीशु मसीह को पाया है, हम संसार को दूसरे नजरिया से देखते, उसी तरह दूसरों के प्रति हमारा नजरिया, हमारा विचार जो बदलता है। हम पहले लोगों को दुश्मन समझते थे, हम पहले लोगों को इस रीति से समझते थे कि वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन आज जब हमने वचन को सुना है, हमारी दृष्टिकोण लोगों के प्रति बदलती है। हम अपने लोगों को, दूसरे लोगों को अलग तरीके से देखते हैं। कई चीजें जब हम विचार करते हैं, हमारी सोच जब बदलती है, तब हम संसार को अलग नजरिए से हम देखते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो हम खास तौर से देखते हैं कि हमारा जो बोलना, उसके ऊपर में असर होता है, हमारे विचारों में, हमारे बोलने में, हमारे बोलने में, यानी कि हम पहले कुछ और बोलते थे, हमारी जो जीभ है कई ऐसी बातें बोलती थी जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब जब हम परमेश्वर के वचन को हमने स्वीकारा है, हमारे जीवन में हमने उसको ग्रहण किया है, तब हमारे बोलने में, जैसे पिछली बार हमने देखा परमेश्वर के वचन के अंदर में कि हमारा बोलना सलूना है, यानी कि हम क्रोध से नहीं बोलते हैं, हमारा बोलना हम बदलते हैं, यानी कि बोलने में, विचार में, हमारे शब्द में, हमारे बोलने में हम लोग बदलते नजर आते हैं। पहले गाली बोलते थे, अब हम वो नहीं बोलते हैं। पहले और कुछ शब्द हम बोलते थे, अब हम उस शब्द को नहीं बोलते हैं। यानी कि हमारे अंदर में जब कार्य होता है तो हमारा जीवन उस रीति से बदलता है। और तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व आयत में बोलने की बात है, जीभ की बात यहाँ पर बताई है कि उस पर लगाम लगाने की बात है। 27वीं आयत के अंदर में हमारे कार्य जो है वो कार्य बदलते हैं। हम पहले कुछ और कार्य करते थे, अब हम और कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे विचार को हमने बदला है, हमारी सोच को हमने बदला है, हमारे नजरिए को हमने बदला है, और इसीलिए अब हमारा जो कार्य है वो कार्य बदलता है। यानी कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य के ऊपर में परमेश्वर का वचन असर करता है, हमें बताता है, हमें चेंज करता है, हमें बदलता है, और इस रीति से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब कार्य करता है तो कहता है। यहाँ पर 27वीं आयत में लिखा कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की व्यथा में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक करे। हमारा जो प्रेम दूसरों के प्रति, और विशेष रूप से यहाँ पर अनाथों और विधवाओं की व्यथा की सुधि लेना, यानी कि उनको मिलना, उनको उत्साहित करना और उनको जो जरूरत है उस जरूरतों के अनुसार में उनको मदद करना, यानी कि हमारा जो कार्य है, हम पहले पाने का कार्य करते थे कि हमको मिले, हम केवल ग्रहण करने के लिए विचार करते थे, लेकिन अब जब परमेश्वर के वचन को हमने सुना है, वो परमेश्वर का वचन हमें बदलता है और हम अब देने वाले बनते हैं, मदद करने वाले बनते हैं। ऐसे खास जो लोग हैं जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि विधवा और अनाथों को उनकी व्यथा में हम सुधी लेते हैं। केवल यही बात नहीं, लेकिन हर एक जो हमारे कार्य है उस कार्य को बदला हुआ हम देखते हैं। तो तीन, ये एक जो कार्य है वो हमारे बदल हैं, लेकिन साथ साथ में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन उस पर हम नहीं चलते तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। हम लोगों ने पुराने नियम के अंदर में पहला समूएल उसका 15 अध्याय हमने पढ़ा और 15 अध्याय के अंदर में खास तौर से शाऊल राजा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को सुनने के बाद में उस पर नहीं चलने का जो परिणाम है, वो परिणाम हम यहाँ पर शाऊल राजा के जीवन के अंदर में हम देखते हैं। अगर आप निकालेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, उसके अंदर से दो मुख्य बात को हम देखना चाहेंगे कि उसका परिणाम कैसे होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि शाऊल को राजा बनाया गया, शमूएल ने उसको अभिषिक्त किया, शमूएल नबी था, उसने शाऊल को अभिषिक्त किया, राजा बनाया। जब लोगों ने कहा कि राजा चाहिए, सबसे पहला राजा इसराइल का शाऊल को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में परमेश्वर का वचन शमूएल के पास में आता है शाऊल के लिए, और शमूएल शाऊल के पास में जाकर उसको वचन सुनाता है और कहता है, और यहाँ पर लिखा है कि खास तीसरी आयत में, 15 की तीसरी आयत में यहाँ पर लिखा है कि अब जा। शाऊल को राजा बनाने के बाद में ये वचन परमेश्वर की तरफ से शमूएल के द्वारा आया और उसने कहा कि अब जा और अमालेक पर चढ़ाई करके उसका जो कुछ है वो सब पूर्णतया नाश कर दे और उसको भी मत छोड़ना, परंतु पुरुष, स्त्री, बालक, शिशु, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा सबको सत्यानाश कर देना। यानी कि एक ऐसा वचन आया कि आप जाकर अमालेक जो प्रजा थी, जो लोग थे, उनको और उनकी सारी चीजों को नाश करने के लिए शाऊल को बताया गया शमूएल के द्वारा परमेश्वर के वचन के तहत। और शाऊल क्या करता है, वो लोगों को, अपने लोगों को, अपने सैनिकों को बुलाता है और बुलाने के बाद में उनको आज्ञा देता है नाश करने के लिए। वो जब नाश करता है, लेकिन 9वीं आयत के अंदर में यहां पर लिखा है, परंतु शाऊल और लोगों ने अगाग के साथ सर्वोत्तम सर्वोत्तम भेड़, बकरिया, गाय, बैल, मोटे मोटे पशुओं, मेमनों और सब अच्छी वस्तुओं को बचा लिया। आज्ञा थी कि सब नाश करना, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ बचा लिया। और बचा लिया उसके बाद में सबसे पहली बात यहाँ पर, जब परमेश्वर का वचन फिर से शमूएल के पास आता है 10वीं आयत के अंदर में, तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा और कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर खेदित हूँ, शाऊल को मैंने राजा बनाया, मुझे बहुत दुख लग रहा है, मैं बहुत खेदित हूँ। क्यों? क्योंकि जो वचन मैंने दिया था, जो मैंने बताया था, वो उसने उसके तहत नहीं किया। और इसीलिए जा शाऊल के पास में, फिर से मेरा वचन है, और जाके उसको कहे। शमूएल जब फिर से शाऊल के पास में जाता है और जाने के बाद में उसको कहता है कि तूने नहीं सुना परमेश्वर ने जो कहा था, तो बोले कि मैंने सब कुछ किया परमेश्वर की आज्ञा के तहत, जो आज्ञा दी थी उसके तहत मैंने सब कुछ किया है। तो फिर शमूएल कहता है कि फिर ये जो मेरे कानों में भेड़ बकरियों की निमिया ना की आवाज जो आ रही है, गाय बेलों का रंभाना क्यों सुनाई दे रहा है? बोले कि यहाँ पर कुछ तूने रखा है, यहाँ पर गाय है, बैल है ये। तो फिर शाऊल कहता है कि हाँ, जो अच्छा अच्छा हष्ट पुष्ट था, जो रोग जिसके अंदर में नहीं थे, ऐसे प्राणी को मैंने बचाया है। तो बोले कि क्यों बचाया है? कहता है कि इसीलिए बचाया है ताकि उसका बलिदान मैं परमेश्वर को चढ़ाऊ, ऐसे भेड़ बकरियों का, ऐसे बैलों का मैं बलिदान अपने परमेश्वर को चढ़ाओ। लेकिन फिर शमूएल शाऊल को यह कहता है 22 आयत के अंदर में, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से कम। शमूएल कहता है कि आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण है। बलिदान, तू सोच रहा है कि मैं इन सारी बातों का बलिदान मैं करूं, परमेश्वर को मैं खुश करूं, उसका लहू में परमेश्वर के लिए बहाव, ये विचार तेरे अच्छे हैं। बलिदान देने के लिए जो तू सोचता है शायद वो विचार अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन था, परमेश्वर की जो आज्ञा थी कि सब कुछ का नाश करना जो तूने नहीं किया, और इसीलिए कहता है कि बलिदान से बढ़कर आज्ञा पालन महत्वपूर्ण। कई बार हम लोग भी वचन को अलग रीति से लेते हैं। उसने ये समझा कि मैं बलिदान दे दूं तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, इसके लिए हम लाए हैं, परमेश्वर ने जो वचन दिया था उसको वो सुनता नहीं है। कई बार ये होता है कि हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। बहुत सही बात है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि लेकिन वो फिर से एक चाटा मारे, यानी तीसरा चाटा मारे, तो बाइबल कुछ नहीं कहता है। गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। दूसरा भी गाल दे दिया, उस पर भी चाटा मारा, उसके बाद में क्या करना? तो बोले कि नहीं, इसके बाद में कोई नहीं, हम भी दे धनाधन, हम भी मारेंगे। कई बार वचन को हम इस रीति से लेते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन तो यूं कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जो आज्ञा देता है उस आज्ञा के तहत हमें उसके ऊपर में चलना है। अगर हम उस वचनों को सुनते हैं, उस वचनों को समझते हैं, समझने के बाद में भी हम बहाना बनाते हैं या उस पर नहीं चलते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं 22वीं आयत में और उसके आगे में कि शाऊल को वहां पर राजा जो बनाया था उसका त्याग किया जाता है, उसको उस राज गद्दी से हटाया जाता है, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन। कई बार हम सोचते हैं कि छोटी सी बात को हम इधर उधर कर दे तो क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, हमें इसके तहत उस आज्ञा के ऊपर में हमें चलना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात हम देखते हैं नए नियम के अंदर में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय अगर आप खोलते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ की बात करते हैं। 19वीं आयत से 21वीं आयत तक यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंका दिया जाता है, अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो उदाहरण देते हैं कि पेड़ एक अच्छा फल देता है, अगर वो अच्छा फल नहीं देता है तो उसको काटा जाता है और उसको जलाया जाता है, उसका नाश किया जाता है। और इसीलिए कहते हैं 20वीं आयत, अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। यानी कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद में हम हे प्रभु कहते हैं, लेकिन उस वचन के तहत हम नहीं चलते। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि कई लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मैंने वचन को सुना है, वचन को सुना है, मैंने कई बार वचन को सुना है, मैं हर इतवार को चर्च में भी जाता था, जाती थी, या फिर मैंने बार बार अलग अलग जगह पर वचन को सुना है, मैं प्रभु को हे प्रभु कहता हूँ, यानी प्रभु के पीछे कि मैंने तेरे लिए बहुत कार्य किए हैं, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला है, बीमारों को चंगाई मिली है, तेरे नाम से मैंने बहुत त्याग किया है, लेकिन त्याग किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं वचन के ऊपर मैं नहीं चला, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी कि जब हम वचन को सुनते हैं और उसके तहत वचन पर नहीं चलते हैं, तो उसका परिणाम शाऊल राजा को जैसे हटाया गया, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वैसा हो सकता है परिणाम। और इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन को जब हम सुनते हैं तो वचन के तहत चलना, उस पर चलने वाले प्रमाण होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर में वो बदलाहट दिखनी चाहिए, हमारे विचारों में, हमारे बोलने में, हमारे कार्य में वो बदलाहट देखनी चाहिए। कई बार हमको ऐसा लगता है कि कैसे इस चीज को हम करें, कई बातें इसके ऊपर में हम सोच सकते हैं, लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर में चलने के लिए अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं, हमें मेहनत करनी है। सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन सत्य वचन है, ये विश्वास हमें करना होगा। पहली बात, परमेश्वर का वचन सत्य वचन है, वो विश्वास हमें करना होगा। परमेश्वर के ऊपर में, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में हमने विचार किया, लेकिन वचन के ऊपर में भी हमको विश्वास करना है कि लिखित वचन परमेश्वर का जो हमारे पास में है, ये सत्य वचन है। और जब ये विश्वास करते हैं उस वचन के ऊपर में, तब हम उस वचन के ऊपर में चलने का प्रयास। हम दूसरी बात, हमारी प्रार्थनाओं में हमें इस बात को लाना बहुत जरूरी होगा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरे वचन को सुनने वाला नहीं, लेकिन तेरे वचन को मानने वाला मैं बनूं, उस पर चलने वाली मैं बनूं, उसके तहत करने वाले मैं बनूं। और ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में आनी बहुत जरूरी है। प्रार्थनाओं से प्रभु बल देता है, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब परमेश्वर से ये कहते हैं, तो प्रभु हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में चले। तीसरी बात, इसी के तहत किस रीति से हम आगे बढ़े, किस रीति से परमेश्वर के वचन के तहत चलने वाले प्रमाणित करें, तो ये कहते हैं कि परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है, यानी कि मेरा संदर्भ, मेरा निर्देश देने वाला मेरा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। ये हमारे जीवन में जानना करना बहुत जरूरी है कि मैं अगर किसी का अनुकरण करूंगा तो मेरे प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या सोचते थे, प्रभु यीशु मसीह कैसा बोलते थे, प्रभु यीशु मसीह अगर ऐसा सिचुएशन मेरे जीवन में आए तो वो क्या करते थे, यानी कि उनका अनुकरण। मेरे जीवन में और कोई व्यक्ति नहीं जिसका अनुकरण मैं करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह का। यानी कि ये हमें अपने आप के अंदर में थाम लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन सत्य है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। प्रार्थना में हम बार बार प्रभु से विनती करें, प्रभु हमें चलने में मदद करें। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण मुझे करना है। कई बार कई चीजें हमारे जीवन में आती है, समस्याएं आती है, सिचुएशंस आते हैं, है ना। जब बच्चे कुछ भी बात उनको पूछे और उनको पता नहीं चलता है, तो वो कहते हैं कि मैं मेरे पापा को पूछूंगा, मैं मेरे मम्मी को पूछ के आता हूँ, है ना, मैं मेरे बड़ी बहन को पूछ के आता हूँ। यानी कि उनको मालूम नहीं है और इसीलिए वो पूछने के लिए जाता है कि पापा को, मम्मी को, बड़ी बहन को पूछ के मैं आपको बताऊं। उसी तरह कई चीजें हमारे जीवन में जब घटती है तो हमें मालूम नहीं होता है क्या करना, उस समय में मैं मेरे प्रभु यीशु के पास जाऊंगा, उन्होंने क्या किया, वो क्या कहते हैं। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह का जो अनुकरण मुझे करना है, मैं उसको करूं। और चौथी बात, सक्रिय रूप से हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, यानी कि सक्रिय बनना है। कोई चीज को अगर हम करना चाहते हैं तो उसके अंदर में पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से हमें भिड़ना है कि मैं जाऊं और मुझे ये करना है। प्रभु वचन ये कहता है कि दुश्मन लोगों को प्रेम करो। तो मुझे प्रेम करना है, कैसे प्रेम करो? मैं जाऊंगी जिससे मेरा विरोध है, जिससे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं जाकर उनसे बात करूंगी और प्रेम करना जो प्रभु ने सिखाया है उसके तहत मैं कदम उठाऊ, यानी कि सक्रिय रीति से परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में आने देना है। तो जब हम ये बातें करते हैं हमारे जीवन में, तब हमारा जीवन जब बदलता है और उस बदलते हुए जीवन को हम नजर करते हैं। पिछली बार हम एंगेजमेंट में गए थे, कल जी हमको कह रहे थे कि इनका जीवन अपने गांव के अंदर में जब वो जाते हैं तो लोग देखते हैं इनके जीवन को और कहते हैं कि ये लड़का बहुत बदल गया, पहले से बहुत अलग हो गया, पहले उसके विचार अलग थे, उसके कार्य अलग थे, उसका बोलना अलग था, लेकिन आज इसका विचार अलग है। और गांव वाले ये गवाही देते हैं इस व्यक्ति को देखते हुए। और वो जो हमारा जीवन है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे संबंधी, हमारे गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारे जीवन, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और उस पर चलते हैं तब बदलाव आती है। दूसरी मुख्य बात जो हम सीखना चाहते हैं वो है याकूब, उसकी जो आयत हमने पढ़ी 25वीं आयत, इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है वह सुनकर भी भूल नहीं जाता वरन फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। यहाँ पर हम विशेष तौर से जब हम देखते हैं ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, जब स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के बारे में कहता है, व्यवस्था सिद्ध व्यवस्था यानी कि नियम और कानून जो परमेश्वर ने दिए हैं, और उस नियम और कानून, और यहाँ लिखा है कि सिद्ध व्यवस्था क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, इसीलिए वो सिद्ध व्यवस्था है। वो सिद्ध इसीलिए भी व्यवस्था है क्योंकि उसके अंदर में ना तो कुछ डाला जा सकता है ना तो उसमें से कुछ निकाला जा सकता है, ये बिल्कुल परफेक्ट जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था की बात हम करते हैं। लेकिन हम इसी चीज को जब देखते हैं तो नए नियम के तहत हम ये जानते हैं कि ये एक सुसमाचार, जिसके बारे में हम कहते हैं कि परमेश्वर ने जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के अंदर में जो हमें दिया है उसके बारे में ये यहाँ पर बात करता है। और आज उस सुसमाचार को हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि उस सुसमाचार के अंदर में सारी व्यवस्था, पुराने नियम की जितने भी व्यवस्था है, नियम है, कानून है, वो सारी बातें नए नियम में इस व्यवस्था में सुसमाचार के अंदर में समाई हुई। और इसीलिए इस सुसमाचार को हमें बहुत ही अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम जानते हैं सुसमाचार नए नियम का है, लेकिन जो व्यवस्था है पुराने नियम के अंदर में है वो व्यवस्था को हम जानते हैं, 10 आज्ञाएं दी है, तू ये नहीं करना, तू ये नहीं करना, तू ये करना, लेकिन सारी बातें सुसमाचार के अंदर में समाई है। और उस सिद्ध व्यवस्था के बारे में यहाँ पर याकूब हमें बताता है। हम आज कुछ उस सुसमाचार को समझने के लिए ताकि हम उस सुसमाचार को बहुत ही अच्छी तरह से समझने, ये चीज क्या है उद्धार पाना, उस सुसमाचार को समझना हमें बहुत आवश्यक है। और कई बार हम सुसमाचार बताते हैं तो आधी बातें बताते हैं, आधी बातें रह जाती है, लेकिन आज कुछ मिनट के अंदर में इस बात को हम थोड़ा सा गहराई से, हम परमेश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं, मेरे पास में ये रस्सी जो है केवल इतनी ही रस्सी है, हम सोच रहे थे कि इतनी लंबी रस्सी लाए जो हमको दिखाई ना दे इधर भी और इधर भी, वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर अनंतकालीन है, यानी कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर में जब हम जाते हैं उत्पत्ति की किताब के अंदर में, तब हम यहाँ पर परमेश्वर को पाते हैं, तब हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर ने शुरुआत जो की उसको हम देखते हैं कि परमेश्वर ने
सारी चीजों को बनाया उत्पत्ति के अंदर में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो छोर है, इस छोर को हम मानेंगे कि ये शुरुआत का छोर है, जहां पर परमेश्वर तो ऑलरेडी उस समय में थे और यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की। वो परमेश्वर, उसके दो महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के हम जानेंगे, उसका चरित्र वो ये है कि परमेश्वर प्रेम है। एक मुख्य चरित्र है कि परमेश्वर, जब हम कहते हैं तो परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम के तहत परमेश्वर हमें, हमारे ऊपर में दया दिखाता है, अनुग्रह दिखाता है और हमें माफी देता। लेकिन परमेश्वर प्रेम है, उसके साथ साथ में दूसरी मुख्य बात परमेश्वर की हम जानते हैं कि जो परमेश्वर जिसने ये बनाया वो पवित्र परमेश्वर है। यानी कि पवित्र होने का मतलब यह है कि वो पाप से घृणा करने वाला, उसमें कोई खराबी नहीं, और न्याय करने वाला, न्यायी परमेश्वर है। तो ये दो बातें हम याद रखेंगे, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेम है, और उसके तहत परमेश्वर के सारे गुण हम दूसरे जो देखते हैं वो हम समझते हैं। तो इसी परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उत्पत्ति की किताब के अंदर में, और उसी परमेश्वर ने, पवित्र परमेश्वर ने, प्रेमी परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया, और सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, सब अच्छा है, भला है। जब मनुष्य को बनाया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसके नाक के अंदर में सांस फूंकी गई, उसको जीवन दिया गया, और परमेश्वर ने उस मनुष्य को, बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब के अंदर में कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, समानता में, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। यानी कि परमेश्वर के गुण उस मनुष्य के अंदर में डाले, और उस मनुष्य को सब कुछ जो बनाया था वो उन्होंने सौंप दिया, जो हम वहां पर, यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ मनुष्य के हवाले कर दिया, और मनुष्य मानो कि यहाँ पर मनुष्य रहता है। तो क्या होता है कि जब भी परमेश्वर की इच्छा होती थी, वहां से यहाँ पर वो घूमते थे, मनुष्य को मिलते थे, बातचीत करते थे। इस मनुष्य को जब भी परमेश्वर को मिलना है, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, और सीधे सीधे यहाँ पर जाके परमेश्वर के पास में जा बातचीत करते थे, और बहुत ही अच्छी उनकी सहभागिता थी, उनकी, उनके साथ में दोस्ती थी, मित्रता थी और रिलेशनशिप था। यानी कि कोई बाधा बीच में नहीं थी दोनों तरफ, और ये एक अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जी रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ आज्ञाएं दी थी। हम आज्ञा के ऊपर में आते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ आज्ञाएं दी थी, और उस आज्ञा के तहत मनुष्य को काम करना था, चलना था। लेकिन उत्पत्ति की वही किताब के अंदर में हम देखते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा के तहत चलना पसंद किया और रिश्ता काट दिया। यानी कि इस रीति से मनुष्य और परमेश्वर का जो रिश्ता कट जाता है, मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और नहीं के तहत, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसने आज्ञा दी थी, आज्ञा को नहीं माना, और नहीं मानने के तहत वो दो बट जाते हैं। हम जानते हैं कि जो उड़ाव पुत्र है, वो अपने बाप के पास से उसने अपना हिस्सा ले लिया और अपने बाप से रिश्ता तोड़ दिया। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से मनुष्य ने रिश्ता तोड़ लिया, और फिर उसने कोशिश की कि इस रिश्ते को फिर से बांधे। मनुष्य कोशिश करने लगा परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन यहां तक वो जा सकता था, यहां से इस तरफ नहीं जा सकता। परमेश्वर प्रेमी थे, परमेश्वर पवित्र है, और ये जो एक गांठ या दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच, और जिसको हम पाप कहते हैं, नियम व्यवस्था को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बारे में, पवित्र परमेश्वर है, पाप है, सुसमाचार के अंदर में ये बात समझ में आती है। ये पाप रूपी गांठ या पाप रूपी दीवार यहाँ पर खटकाती है, और उसके तहत मनुष्य यहाँ पर पाप में पड़ा हुआ है, और ये बात हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत कोशिश की अलग अलग रीति से अपने दासों को चुनकर, यहाँ पर पुराना नियम हम पूरा देखते हैं कि किस रीति से इस पाप से दूर जाने के लिए, हटने के लिए, इस पाप को दूर करने के लिए कोशिश की, और बार बार हम देखते हैं कि मनुष्य यहाँ पर भेड़ बकरियों को चढ़ाता था, कबूतरों को उसका लहू चढ़ाता था, बलिदान किया जाता था, सब कुछ कुछ समय के लिए ये चल रहा था। लेकिन परमेश्वर जो है प्रेम है, हमने देखा, और वो प्रेमी परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्रेम करते, और इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि ये अब इतना काफी नहीं है, और इसीलिए जो उसकी योजना में उसने जो सोचा था उसके तहत उसने कहा कि अब मनुष्य को हमें पाप से दूर करने के लिए जाना बहुत आवश्यक है। नए नियम के अंदर में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, और परमेश्वर का वचन हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा इस संसार के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि पुराने नियम के अंदर में जो भेड़ बकरियां जो थी, जो कबूतर थे, जो बलिदान चढ़ाया जाता था, वो बलिदान काफी नहीं था, वो बलिदान के द्वारा पाप मिटाए नहीं जा सकते थे, और इसीलिए सारी चीजें मनुष्य के पास में जो थी वो सब पापी थी, जिसके अंदर में दाग था। लेकिन परमेश्वर को अगर हमें खुश करना है तो पवित्र बलिदान की जरूरत थी, और पवित्र बलिदान हमारे पास में, मनुष्य के पास में पवित्र बलिदान नहीं था कि जो परमेश्वर के लिए चढ़ाया जा सके, और इसीलिए खुद परमेश्वर उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि वो खुद ही संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने पवित्र जीवन जिया। उनका जो जन्म है, उनका जो जीवन है, उस जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जो पाप है, पाप की जो गांठ है वो बहुत ही खतरनाक है ना। यहाँ पर लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पाप में ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए। हम परमेश्वर से दूर थे, हमने वो रिश्ता बंद कर दिया था, और इसीलिए उस पाप को मिटाने के लिए, हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर में आए। प्रभु का वचन कहता है रोमी 3:23 के अंदर में कि सभी ने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से दूर है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और दूसरी मृत्यु जो प्रकाशित वाक्य 21 के अंदर में बताया गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक बार तो हम सबको मरना है, इब्रानी के अंदर में 13वें अध्याय में कहा है कि एक बार हम सबको मरना है, इस संसार को छोड़ के जाना है, लेकिन उसके बाद जो मृत्यु है, दूसरी मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, जो कि नर्क है, अग्नि और गंधक की जो खाई है, उस खाई के अंदर में डाला जाएगा, उसकी बात चल रही है वो मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और न्यायी है, वो पाप को घृणा करता है और न्यायी परमेश्वर है। उसने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो पाप से, जिन्होंने मुक्ति पाई हो, और मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही रास्ता, प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी के अंदर में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमको उद्धार मिलने पाए, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया, 35.5 साल इस संसार के अंदर में रहे। प्रभु यीशु मसीह ने जाकर गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, उन्होंने सुसमाचार बांटा, अपने चेलों को बनाया, और उनको ये काम दे दिया कि जाओ पृथ्वी के छोर तक जाकर इस बात को, इस सुसमाचार को लोगों तक बताओ। अगर तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, यशाया कहता है वो मेघ जैसे श्वेत उसको किए जाएंगे, और प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, उसको कबूल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर हम अपना प्रभु कह के स्वीकार करते हैं और पापों का पश्चाताप करते हैं, तो ये प्रभु यीशु हमें पापों से मुक्ति दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर उन्होंने पवित्र जीवन जिया, पवित्र जीवन जीने के बाद में क्रूस के ऊपर में अपना बलिदान उन्होंने, लहू जीवन है, बलिदान इसीलिए दिया ताकि इस पाप से हमें छुटकारा मिले। जब हमको पाप से छुटकारा मिले, प्रभु यीशु मसीह मारे गए गाड़े पे, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए और जीवित होने के बाद में उनको उठा लिया गया और वही प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। जब आएंगे तब जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पापों का पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी है, इसका अनुभव किया है, उनको वो स्वर्ग में ले जाएगा, जो हम गीत गाते हैं कई बार। लेकिन जिन्होंने पापों की माफी नहीं खाई, उनको वो गंधक और आग की खाई में जो दूसरी मृत्यु है उसमें झोंका जाएगा अनंत काल के लिए। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो जीवन हमें प्राप्त होता है। और वो जीवन अगर हमने नहीं पाया है तो जो वचन हम सुनते हैं वो सुनने में हमें समझ नहीं आएगा, जो वचन के ऊपर में हम चलना चाहते हैं वो चलने में हमें बाधाएं आए। और इसीलिए प्रभु का वचन यूहन्ना में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को माफ कर और हमारे सारे अन्याय को मिटाने के लिए सामर्थ्य। हमें नम्रता से उसके वचन को ग्रहण करना है, नम्रता से इस सुसमाचार को ग्रहण करना है, नम्रता से प्रभु के वचन को ग्रहण करना है, हमारे जीवन को प्रभु के सामने में रखना है। प्रभु, मैं पापी, मैं मानता हूँ मेरे पापों, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। जब हम वो करते हैं तो हमारे जीवन में अनुभव होता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है हमारे पापों को समझने के लिए और हमें पापों की माफी देता है। अगर आपने किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है तो ये यीशु आज आपके पापों को माफ करने के लिए सामर्थ्य, क्या आप वो अनुभव करना चाहें? सुसमाचार ये है, प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है, स्वर्ग में हमको जाने के लिए यहाँ से इजाजत है और उसके बाद में हमें मेहनत करनी है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है हमारे पापों की माफी हो जाती है और फिर से जो हमारा रिश्ता यहाँ पर खराब हो गया था वो रिश्ता फिर से प्रस्थापित होता है। प्रभु, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नई सृष्टि है और नई सृष्टि इस रीति से है कि फिर से जो रिश्ता हमारा था वो रिश्ता कायम हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता फिर से बन जा रहा है और ये शक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह, कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें पापों का छुटकारा दे सके। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है?
प्रभु कहता है कि हम चाहे कितने भी घोर पाप में हो, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं,
पश्चाताप करते हैं, वो माफ करने के लिए सामर्थ्य है। क्या आपने वो अनुभव किया? नहीं किया है तो प्रभु आपको सहायता करे। जो सिद्ध व्यवस्था है, स्वतंत्र करने की व्यवस्था है, पापों से स्वतंत्र करने की व्यवस्था है, वो यीशु मसीह ने हमको दी। आइए हम प्रार्थना करें।